आगे देखते हैं एक और मसला, जुम्बी से मेलजोल और मुसाफहा जायज है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन जुनाबत की हालत में मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। आपने मेरा हाथ पकड़ा और मैं आपके साथ हो लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठ गए और मैं चुपके से निकल गया। घर जाकर गुसल किया, फिर वापस आया। आप अभी बैठे हुए थे। आपने पूछा, अबू हुरैरा तुम कहाँ गए थे? मैंने सारा हाल कह सुनाया तो आपने फरमाया, सुबहान अल्लाह, मोमिन नापाक नहीं होता। कितना प्यारा कॉल था अल्लाह के नबी का, और ये सही बुखारी की रिवायत 285 है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मतलब क्या है कि मोमिन नापाक नहीं होता, यानी अपनी असल के एतबार से मोमिन नजस और पलीत नहीं होता। यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसको आप और मैं बड़ी मोहब्बत से पहला कलमा तैयब तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं सुनते आए बचपन से, तो ये क्या बताता है कि कलमा पढ़ते ही बंदा बाहर और अंदर से पाक होता है। दूसरा इसका ये भी मतलब है कि मोमिन दिन में कई बार वजू करता है, गुसल की जरूरत पड़े तो गुसल कर लेता है तो पाक हो जाता है। मोमिन जो होता है, जिसका दिल पाक होगा ना, याद रखिए वो अपनी जिस्मानी तहारत का भी बहुत ख्याल रखेगा। फिर आप देखिए कि जुनाबत हुक्मी नजासत है, हकीकी और हिसी नहीं। जरा सा समझिए, मुश्किल जुमला इसलिए मैंने पढ़ा ताकि आपको वाजे भी कर दूं। हुक्मी नजासत क्या होती है और हकीकी और हिसी क्या है? देखिए, अल्लाह ना करे आपके जिस्म पे कुछ गंदगी लग गई, जिसको आप कह सकते हैं यूरिनेट कर दिया बच्चे ने, या बच्चे की गंदगी लगी, ये है हकीकी नजासत। हाथ में कुछ लगी और चीज़ दिख रही है, जबकि जुनाबत की कैफियत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप अपने आप को पाक कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, जैसे टॉयलेट यूज़ करने के बाद इंसान अपने आप को पाक साफ कर लेता है, तो अब जाहिर तो उसमें कोई गंदगी नहीं दिख रही ना, आपका जिस्म भी पाक, आपके हाथ भी पाक, लेकिन ये हुक्मी नजासत है, ये मुराद है इससे। यानी शरीयत ने मसलियत की बिना पर एक हालत में बावजह नजस से हुक्मी इस पर गुसल वाजिब किए, चुनाचे जुम्बी के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना और खाना पीना सब जायज है। हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मुझे रात को जुनाबत लाहक हो जाती है, मुराद ये कि नहाने की हाजत आती है, जरूरत पेश होती है, तो आपने फरमाया कि वुजू कर लो, अपनी शर्मगाह धो लो, फिर सो जाया करो। क्या पता चला कि अगर सोना पड़े तो सो जाओ, लेकिन फिर अगली नमाज से पहले गुसल किया जाएगा। मुराद यह है कि सोने का अगर कोई इरादा करे तो सो सकता है, लेकिन फिर बाद में उठकर गुसल करेगा। और ये जो रिवायत है, ये सही बुखारी की रिवायत है 290 और सही मुस्लिम 306। फिर अगली रिवायत साथ लीजिए, इस कैफियत में इंसान और क्या कर सकता है? खा पी सकता है। अल्लाह के नबी जब हालत जनाबत में खाना या सोना चाहते तो नमाज के वजू की तरह वजू करते थे। यानी अगर पहले से खाना चाहते हैं, रमज़ान है, सहरी से पहले कुछ खाना चाह रहे हैं, या आम दिनों में भी, इवन किसी दिन के भी वक्त में, तो गुस्ल से पहले खाया जा सकता है। और ये बुखारी की रिवायत 288 और सही मुस्लिम 305 में आप ये चीज़ देख सकते हैं। फिर इसी तरह से एक और अमल जो किया जा सकता है इस कैफियत के अंदर, वो क्या है? आपने फरमाया, जो कि अपनी बीवी से सोहबत करे और फिर दोबारा सोहबत करना चाहे तो इसे वजू कर लेना चाहिए। और आप देख रहे हैं सारी सही दर्जे की रिवायत है, ये सही मुस्लिम की रिवायत 308 है। तो क्या पता चला कि बगैर गुसल किए दो बार भी ये ताल्लुक कायम किया जा सकता है। ठीक है, अब आप इस सारी चीज़ों को जितनी देखी हैं अगर जमा करेंगे तो आपको खाने पीने की भी इजाज़त मिल गई, सोने की भी इजाज़त मिल गई, दोबारा फिर ताल्लुक कायम करने की भी इजाज़त मिल गई, फिर इसी तरह से आप ये भी देखें कि जुम्बी के साथ हाथ मिलाने की भी इजाज़त मिल गई। एक और चीज़ भी, और वो क्या है? हैज़ा औरत से जिमा करने की ममानियत। जिस चीज़ से रोका गया है वो क्या है कि हैज़ की हालत में औरत से हम बिस्तरी करना सख्त गुनाह है। और इसकी दलील कुरान पाक में सूरत अल बकरा आयत नंबर 222, यानी 3 दफ़ा 2 लिख लें, और अगर सूरह बकरा को भी 2 लिखते हैं तो 4 222 याद रख लें, तो आपको भूलेगा नहीं ये नंबर। फातज़िलुन निसा फिल महीद, अय्याम हैज़ में औरतों से किनारा कशी करो, सोहबत ना करो। यानी किनायतन बात की, खोल कर नहीं बयान किया, लेकिन समझने वाले समझ भी गए कि ऐसे दिन औरत के लिए तकलीफ के दिन हैं, गंदगी के दिन हैं, तो अपनी बीवियों से जिस्मानी ताल्लुक, जिसको खास ताल्लुक वो कहा जाए जिसके नतीजे में औलाद पैदा होती है, ये नहीं करना। ये है विमेन राइट। कोई माँ बाप भी अपनी बेटी के लिए ये बात नहीं कह सकते किसी को, जो अल्लाह ताला ने औरतों के हक में बात की। आज हम जानते भी नहीं और औरतों के बारे में इतनी डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं कि शायद कुरान जो है और इस्लाम औरतों के पीछे ही है। और अगर कोई इस गुनाह का मुर्तकिब हो जाए, यानी अगर कोई शौहर अपने जोश या गलबे में अपनी बीवी से इन दिनों में ताल्लुक कायम कर ले, तो इसके बारे में कफारा क्या है ये भी सुन लीजिए। फरमाया, जो शख्स हालत हैज में अपनी औरत से सोहबत करे तो इसे चाहिए कि 1 दीनार या निसफ दीनार खिरात करे। अब 1 दीनार या निसफ दीनार, ये दोनों बातें इसके अंदर या क्यों हैं? इसलिए कि हदीस में ये मौजूद है मुख्तलिफ हालात के तहत से। ये रिवायत अबू दाऊद की 264 है और इसी तरह से तिरमिजी में 137 और मुस्तदरिक हाकिम में 171-172 है। अब ये तो इतनी बात से आपको इतनी बात समझ है, लेकिन दीनार क्या होता है जरा सा नोट कीजिए। ये आज का दीनार वो करेंसी नहीं है जो के किसी भी मुल्क में चलती हो। दीनार 4.5 माशे, और जदीद अगर आज के इशारी वजन के मुताबिक देखें तो 4.374 ग्राम सोने का होता था। आज सोना किस तरह पर ग्राम है, सोचिए जरा। 1 ग्राम सोना कितने का है, उसको 4 से जरब दीजिए, इतना क्या बनेगा 1 दिनार। तो 1 दिनार और निसफ दिनार जाहिर है कि उससे ज्यादा होगा, 2 माशे यानी 2.187 ग्राम हुआ। तो कह लीजिए कि इस वजन के मुताबिक सोना या उसकी कीमत सदका करनी होगी, किसी मुस्तहिक को दे दे और आइंदा के लिए तौबा करे। ये है कॉम्पनसेशन। मेरा ख्याल है सुनने में तो ये आता है 1 लाख का तोला है तो तोले में तकरीबन 12 ग्राम होते हैं, खुद ही हिसाब लगा लीजिएगा, 40-50 हज़ार रुपये बनते हैं आज के पाकिस्तानी, बाकी मुल्कों का आप खुद ही हिसाब लगाएं। अल्लाह सुबहाना ताला ने कैसे औरतों को डिफेंड किया, और हर औरत अपने मिजाज और तबीयत के एतबार से जानती है कि इन दिनों में वो सेहत से ज़्यादा बीमारी के करीब होती है। और ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से मजीद मोहब्बत बढ़ाने का जरिया भी होता है। जब कोई चीज़ हर वक्त ही अवेलेबल होती है तो उसकी कदर नहीं होती। अभी तक जो बातें की हैं उसका खुलासा, पहली बात है कि मोमिन हकीकतन नजस और नापाक नहीं होता। दूसरी बात हमने सीखी कि जुनाबत हुक्मी नजासत है, हकीकी और हिसी नहीं है। तीसरी बात सीखी कि जुम्बी के साथ मिलना जुलना उठना बैठना खाना पीना सब जायज़ है। और फिर अगली चीज़ हमने देखी कि हैस यानी एक गुसल के बीच में क्या कुछ किया जा सकता है, खाया जा सकता है, सोया जा सकता है, लेकिन हद क्या। अगली नमाज, देखिए ये जो हमारे कल्चर में बड़ा मारूफ है ना कि हर कदम पे फरिश्ते लानत करते हैं और बाज़ लोग बड़ी ऑकवर्ड सी हरकतें भी करते दिखते हैं। नहीं, सबको बताएंगे क्या आप ये बातें, ऐसा तो नहीं कोई करता ना। तो ये जो बात है कि गुसल ना किया हो और इस कैफियत में उठना पड़े तो बड़े बड़े कदम लीजिए, ये सब जहालत की बातें, अब वो दौर पीछे चला गया, ठीक है। और फिर अगली चीज़ हमने सीखी कि हैजा से जिमा करने की ममानियत है। कुरान की आयत 2-2-2, 3-4 दफ़ा 2 लिख लीजिए, ये इसकी दलील भी है। और आप इस आयत की तफसीर सुन लीजिए और इस पे पूरा टॉपिक है। अगर आप में से कोई भी इन मसाइल को मजीद डिटेल से सुनना चाहता है तो किताबु तहारा इसी सीरीज की जिल्द नंबर 2 है, तफहीमु सुन्ना, आप उसको सुन लें पढ़ लें, उसमें हर मौजू पे पूरा चैप्टर है। यहाँ तो चूंकि हमारा मेन टॉपिक नमाज है और नमाज का तकरीबन इन सारी ही हालतों के साथ ताल्लुक है, तो लिहाजा हम इनको साइड इश्यूज के तौर पे पढ़ रहे हैं ताकि हमारी वो बहनें जो वो पिछली चीजें नहीं पढ़ सकी, कम से कम उनकी नमाज ठीक हो। फिर हमने हैजा से जिमा का कफारा देख लिया और रिवायतें भी हमने सारी देख ली। तकरीबन 4 माशे और कुछ उसके ऊपर इतना वजन सोने का देना पड़ेगा, और ये कब है, जब जोश के दिन हो। लेकिन अगर आखिरी दिन चल रहे थे, बिल्कुल कम थे, ख़त्म होने वाला था, तो फिर आधा दीनार है, यानी 1 और आधे दीनार का फ़र्क आप समझ चुके होंगे कि इसमें दोनों चीज़ों का फ़र्क रखा जाएगा। और याद रखिए कि हालात और वाकयात के मुताबिक ये सारी चीज़ें होंगी। फिर अगला मसला इसमें समझिएगा जो मर्दों से मुतल्लिक है, मज़ी के खारिज होने से गुसल वाजिब नहीं होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत ताकतवर जवान थे और इन्हें मजी कसरत से आती थी। आप कह सकते हैं कि मजी वो ट्रांसपेरेंट सेक्रीशन जो जस किसी भी ख्वाहिश के साथ किसी भी मर्द को बलूगत में खारिज हो जाए, ठीक है। अब उनके साथ ऐसी एक कैफियत होती थी, उनको मसला मालूम नहीं था कि इसके खारिज होने पर गुसल वाजिब होता है कि नहीं। आप वो अल्लाह के नबी के दामाद थे और ज़ाहिर है कि आमने सामने पूछते हुए आपको शर्म महसूस हो रही थी, तो उन्होंने अपने एक दोस्त मिकदाद रज़ी अल्लाह अन्हो से कहा कि आप ये मसला दरियाफ्त करें। तो जब हज़रत मिकदाद रज़ी अल्लाह अन्हो ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया कि इसके खारिज होने पर गुसल वाजिब नहीं है, बल्कि फरमाया कि इसके निकलने पर सिर्फ वुजू करना चाहिए। ठीक है, ये रिवायत सही मुस्लिम की 696 रिवायत है। और एक और रिवायत में आपने फरमाया कि अगर मजी खारिज हो तो शर्मगाह को धो लो और वुजू कर लो। ये रिवायत बुखारी की 269 है। और तीसरी रिवायत जो सुनन नबी दाऊद की 210 रिवायत है, उसमें फरमाया और कपड़े पर जहां मजी लगने का ख्याल हो वह एक चुल्लू पानी लेकर छिड़क लेना काफी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अरब माशरा पानी की किल्लत, कमी बेशी सब चलता है ना। अल्लाह के नबी ने उस दौर के लोगों को जब ये मसाइल सिखाए तो आज आपके मेरे लिए ये हुज्जत बन गए। आम हालात आज के दौर के टूटियां घरों में टैप वाटर धोया जाएगा पूरा, साफ सफाई का और एक अपना शरह सदर भी होगा। लेकिन अगर मजबूरी है या हालात ऐसे हैं तो ये जो बातें हैं ये आप सरकमस्टांसिस को सामने रखते हुए जहन में रखिएगा कि जहाँ पानी ना हो तो कम से कम इतना करना भी काफ़ी है। अब कुछ इस्तलाहात यानी टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ते हैं जब भी अहादीस में ये मौजू चलते हैं, मसलन जैसे अभी यहाँ मजी आया, आगे मनी आएगा, इसी तरह वदी। ये क्या है? पहली बात है कि ये सिक्रीशंस हैं। इंसान मेडिकल लाइन पे जब जाता है तो उसको जिस्म की एक एक चीज़ पढ़नी होती है ना। आप इन चीज़ों को बिल्कुल इसी सोच के साथ सुन सकते हैं इस वक्त कि ये बॉडी सेक्रीशंस हैं। अब जैसे बच्चे का पेशाब है तो अब ये कोई शर्माने और कीकी करने वाली बातें तो नहीं है ना। तो जिस्म से कुछ गंदगियां निकलती हैं, ये भी चीज़ें कुछ उसी में से हैं। ठीक है, तो फ़र्क इनका हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि कोई चीज़ें नापाक है और कोई नापाक नहीं है। क्योंकि जो नापाक होगी उसको तो धोना पड़ेगा, तो जो पाक है उसके लिए धोने की जरूरत नहीं होती। मस मजी जिसका जिक्र ये ऊपर की अहादीस में, ये उस लेसदार पतले पानी को कहते हैं जो शहवत के वक्त लज्जत और जोश के बगैर शर्मगाह से निकलता है और बाज़ दफ़ा इसके निकलने का एहसास भी नहीं होता। इसकी वजह से गुस्ल वाजिब फर्ज नहीं होता बल्कि वुजू टूट जाता है। तो आप कह सकते हैं कि मजी के निकलने पर वुजू करना लाजिम है। दूसरी चीज़ है मनी, शर्मगाह से इंजाल के वक्त लज्जत और जोश के साथ खारिज होने वाला सफ़ेद पानी होता है जो इंसानी तख्लीक का मादा और असल है, और इसके इस कैफियत के साथ निकलने से गुसल वाजिब हो जाता है, यानी वो मादा जिससे बच्चे की तख्लीक होती है। ये पानी जो है निकले जिस्म से ख्वाहिश के साथ उस पर फिर गुसल वाजिब हो जाता है। वदी तीसरी चीज़, वो गाढ़ा सफ़ेद मटियाले रंग का पानी जो पेशाब से कबल या बाद खारिज होता है और बगैर बू के होता है, इसके निकलने पर गुसल फर्ज नहीं होता, अलबत्ता वुजू टूट जाता है। ठीक है, लिकोरिया का नाम आपने सुना होगा, उसका भी मसला सुन लीजिए। लिकोरिया से भी गुसल वाजिब नहीं होता। जिन औरतों को सफ़ेद रतूबत यानी लिकोरिया की शिकायत होती है, इससे इन पर गुसल लाजिम नहीं होता बल्कि इसके निकलने से वुजू टूट जाता है, अलबत्ता वो वुजू करके हस्बे मामूल नमाजें अदा करती रहेंगी। तो आप देख सकते हैं कि जिस जात ने हमें बनाया उसने बहुत अच्छे तरीके से अहकाम भी दे दिए। ये है अल्लाह ताला की जात। आज वेस्ट में या इवन छोटे छोटे बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन के नाम पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है लेकिन उनके पास इन चीज़ों का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट नहीं है। इसी तरह कुछ लोग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जानते हैं लेकिन मेडिकली या तिब्बी तौर पे इन चीज़ों को नहीं जानते। इसीलिए फिर हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है कि जो हमें ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में गाइड करता है। फिर इसी तरह हैज़ा को छूना और इसके साथ खाना जायज़ है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब औरत हैज़ यानी यामे माहवारी से होती तो यहूदी इसके साथ खाते पीते नहीं थे, ना इनके साथ घरों में इकट्ठे रहते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाइजा वो खातून जो यामे हैज़ से गुजर रही हो, इससे जिमा के सिवा हर काम कर सकते हो। मुराद ये कि वो नापाक नहीं है, आप उसको बिल्कुल गुनाहगार समझकर या गंदा समझकर उसके हाथ की रोटी भी ना खाएं, ऐसी बातें नहीं। और ये रिवायत सही मुस्लिम में 2302 नंबर की है। मुराद क्या कि हाइजा के साथ सिवाय हम बिस्तरी के खाना पीना, उठना बैठना मिलना जुलना, इसे छूना اور بوسو کنار سب باتیں جائز ہیں، یعنی وہ خاص تعلق جس میں اولاد حاصل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ باقی چیزیں جائز ہیں، ورنہ تو عورتیں گلٹ میں چلی جائیں. اور آپ دیکھیے کہ اسلام واقعی معتدل دین ہے نا، وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا، تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ یہود میں عورت کو بالکل ہی ناپاک اور نجس سمجھ کے الگ کرتے تھے، نصارہ اپوزٹلی دوسری حد پہ چلے گئے. آج بھی کافرستان اور وادی کیلاش میں کچھ ایسے قبائل ہیں کہ انہوں نے گھر بنائے ہوئے الگ سے، کہ جہاں پوری بستی کی وہ عورتیں بند کر دی جاتی ہیں جو ان دنوں میں ہوتی ہیں. آپ خود سوچئے کہ یہ بات تہذیباً بھی کیسی لگتی ہے. تو اسلام ایسی کوئی عبث بات کا حکم ہمیں نہیں دیتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ مجھے حالت حیض میں آزار باندھنے کا حکم دیتے، پس میں آزار باندھتی، آپ مجھے گلے لگاتے تھے اور میں حیض والی ہوتی تھی. بخاری کی روایت 300 اور مسلم 293. تو کیا پتہ چلا کہ بیوی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ایون سونا، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی اعتکاف گاہ سے، یعنی آپ مسجد میں تھے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا حجرہ مسجد کے ساتھ ہی تھا، تو اللہ کے نبی مسجد میں تھے، مجھے بوریا پکڑانے کا حکم دیا، یعنی اعتکاف گاہ سے جا کے مسجد سے ایک بوریا، مراد کوئی آپ جائے نماز کہہ لیجئے، کوئی بچھانے کی چیز تھی. میں نے کہا کہ میں حائضہ ہوں. آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھوں میں یا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. مراد یہ کہ ان دنوں میں عورت کے ہاتھ پاک ہے، آپ اس کے ہاتھ سے جائے نماز لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، ایون کپڑے لینا دینا. دیکھیں ہم ان چیزوں میں تو بال کی کھال نکالتے ہیں، ہمیں دوسری بھی چیزوں میں اتنا ہی کیئرفل رہنا ہے جہاں واقعی حلال اور حرام کا بہت بڑا فرق ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی 298 تھی. پھر اسی طرح سے حضرت عائشہ ہی سے ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی. یہ بھی روایت آپ نوٹ کیجئے. اور دیکھیں موسٹلی روایتیں اس میں صحیح بخاری کی ہیں اور عائشہ صدیقہ سے ہے، کیونکہ یہ ذاتی مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہی ہم تک پہنچے ہیں. یہ جو آخری ہم نے ابھی دیکھی ہے اس کا ریفرنس نوٹ کیجئے گا کہ آپ قرآن پڑھتے تھے اور آپ کی ازواجہ جو تھی وہ پاک نہیں ہوتی تھی. یہ بخاری کی روایت 297 ہے. اتنی باتوں کو اگر ہم سم اپ کریں تو کیا بات نکلی بیچ میں، کہ مضی کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، پھر وضو کرنا ہے، پھر اسی طرح پرائیویٹ پارٹ کو دھو لینا چاہیے، اور اگر کوئی پانی کا ایشو ہے تو ایک چلو بھر پانی سے اس جگہ کو صاف کر لینا چاہیے. پھر ہم نے فرق دیکھا مضی، منی اور ودی کا، اور ان تینوں میں سے فرق میں یہ تھا کہ مضی کا جو پانی ہے یہ ناپاک ہے جبکہ منی ناپاک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مادے سے پیدا کیا ہے وہ ناپاک نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح ودی، کسی کو بھی کوئی ایسا ڈسچارج جو کہ پیشاب سے پہلے یا اس کے بعد آئے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر اسی طرح ہم نے کیا سیکھا کہ لکوریا، جس کو سفید رطوبت کہہ سکتے ہیں، اس سے غسل واجب نہیں ہے، وضو ٹوٹتا ہے، ہر نماز سے پہلے وضو کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہم نے سیکھا کہ حائضہ کو چھونا اور اس کے ساتھ کھانا وغیرہ جائز ہے، یعنی عورت اپنی ذات کے اعتبار سے ناپاک نہیں ہوتی. پھر ہم نے دیکھا کہ یہود میں حد تھی کہ ایسی عورتوں سے گھر کا کام تک نہ کرواتے اور نہ ان کے ہاتھ کی کوئی چیز کھاتے پیتے تھے. اور پھر اگلی چیز ہم نے کیا سیکھی کہ حضرت عائشہ کی روایت سے کہ اگر ایسے دنوں میں عورت ہو تو شوہر اس کے ساتھ سو سکتا ہے، صرف ذاتی وہ تعلق ہی منع ہے. اور اسی طرح ایسی عورت اگر مرد کے لیے کوئی جائے نماز لاتی ہے یا مسجد سے گزر کا کوئی چیز لانا بھی چاہے تو اس کی بھی رخصت موجود ہے. اور حضرت عائشہ کی ان ساری روایات کو دیکھیے تو یہ جو صحیح بخاری کی 297 اور مسلم 301 سے پتہ چلا، کھانا جائز ہے، اٹھنا بیٹھنا جائز ہے، ملنا جلنا جائز ہے، چھونا، بوسو کنار کرنا، محبت کا اظہار کرنا، یہ سب تو جائز ہے، صرف ناجائز کے فرج یعنی پرائیویٹ پارٹ میں مجامعت کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے احکامات کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق دے.